जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीर बन जारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीर बन जारी बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारी यमुना तीर बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारी यमुना तीर बन चारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे
श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय दस श्लोक क्रमांक चार अंत प्रवेश गंगाया अंबोज वनरजनी श्रीक्रीडितो जुवीति गज एवा करेणु अंत प्रवेश गंगायाम अंबोजवनराजनी स क्रीडित युतो गजायेव करेणुभि अन्तः प्रविश्य गंगायाम अम्बोज वनराजनी ते क्रीडितु युयुतुभि गजरावीव करेणुभि अन्तः प्रविश्य गंगायाम अम्बोज वनराजनी श्रीक्रीडितु युयुतुभि गजराजेव करेणुभि प्रविश्य घुसकर गंगायाम गंगा अर्थात मंदाकिनी में अम्बोज कमलों का वन राजनी, जहाँ घना जंगल था, श्री क्रीड़ी तो दोनों क्रीड़ा किया करते थे। युवती भी युवतियों के साथ में गजो दो हाथी इवा सदृश करेणु भी हथनियों के साथ। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की कमल के फूलों के उद्यानों में आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र युवती के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जिस तरह पानी में पानी के भीतर दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तात्पर्य सामान्यतया लोग अपने पापों को धोने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, किंतु यहाँ पर उसका दृष्टांत विस्तृत प्रस्तुत हुआ है कि जिस तरह मूर्ख लोग पाप करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं है कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध होता है। आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दिशा पर निर्भर करता है। ओम ज्ञानति मिरन्धस्य ज्ञानं धनुशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिश्रिये। वन्दाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुषापुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यास्तहं प्रपदे। सूर्यशतसमकान्त्यरुणवसन सुबलितकाण्डदेह कमललोचन। हरे कृष्णा सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं को, जो भागवत सत्र में भागवत कथानुरागी सभी आप बता रहे हैं, उनका स्वागत है। तत्प्रसंग के अनुसार दशम स्कंद जो भगवान की दामोदर लीला एवं कुबेर पुत्र जो मणिग्रीव एवं नलकुबेर का उद्धार का प्रसंग चलता है, भी बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है भक्तों के लिए। और विशेष करके इस लीला का जो हर साल दामोदर मास में भक्त लोग वैष्णव लोग श्रवण करते हैं एवं स्मरण करते हैं, तो इस मधुर प्रसंग चलता है भी श्रीमद् भागवतम का। तो यशोदा मैया हम प्रसंग सब जानते हैं, एक दिन यशोदा मैया स्वयं दधि मथने के लिए तैयार हुई और स्वयं, चूंकि उनके पास कई खास चाचा थी, लेकिन उस दिवाली के दिन यशोदा मैया स्वयं अपने हाथ से दधि मंथन करने के लिए तैयार हुई और उस माखन को निकालकर अपने लाला को खिलाना चाहती थी। क्योंकि लाला अन्य अन्य गोपियों के घर जाकर चोरी करता था तो बहुत शिकायत आने लगती थी, लाला चोरी करता घर में आकर। तो यशोदा मैया ने कहा था, मेरे घर का शायद मक्खन अच्छा नहीं है या जो दासियाँ निकालती उसमें प्रेम भाव नहीं है। तो इसी सोच कर वह स्वयं दधी मथने लगे। तो उसी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा मैया उस कार्य में लगे हुए थे दधि मंथन के लिए, और कृष्ण जो बाल स्वरूप लाला के रूप में है वो शयन कर रहे थे शयन कक्ष में। तो यशोदा मैया दधि मथने के समय सुंदर वस्त्र धारण किए थे जो रेशमी वस्त्र थे, और मालती फूल के मस्तक में डाले हुए थे, और ब्रह्म मुहूर्त में उसी लाला का जो उसने लीला किया था पूर्व में उसका गुणगान करती थी। उस कार्य करते हुए दधि मंथन कर रही थी, कीर्तन कर रही थी और दधि मंथन कर रही थी, पूरा मन से शरीर से वाणी से तीनों प्रकार से भगवान की सेवा में यशोदा मैया लगी थी। और लाला सो रहा था शयन कक्ष में, जब कोई भक्त उनका प्रेमी भक्त किसी तरह कार्य में लगता है तो कैसे सो पाता है। तो लाला उठकर उसी स्थान पर आया गया, वहाँ सुखदेव को गोस्वामी कहते हैं कि उसको दूध पीने की इच्छा से वो यशोदा मैया के पास आया। तो वहाँ जो यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी वहाँ आकर लाला ने मंथनी पकड़ लिया, मंथनी पकड़ लिया तो तुरंत यशोदा मैया का ध्यान जो कीर्तन कर रही थी दधि मंथन में ध्यान था वो टूट गया और तुरंत मंथनी पकड़ा तो रुक गए मंथनी। तो तुरंत नीचे देखा तो लाला वहाँ आ गया था। तो यशोदा मैया तुरंत समझ गए ये बालक बुद्धिशाली हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि दधि मंथना जो कार्य है वो रोकना उनका ये धैर्य है, जो मंथनी है उनको पकड़ लेंगे तो तुरंत पूरा कार्य ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए यशोदा लाला ने मंथनी पकड़ लिया। तो यशोदा मैया तुरंत ध्यान हटकर लाला के पास गया, और जब कृष्ण ने यशोदा मैया समझ गए कि दूध पीना इच्छा रखते हैं लाला, तो उन्हें गोद में उठाकर दूध पान स्तनपान कराने लगी यशोदा मैया। तो स्तनपान कराते हुए तो उसने एक किचन में दूध रखा था गर्म करने के लिए, तो दूध उबलने लगा। तो उबलने के तो यशोदा मैया का ध्यान उधर गया, तो उसको भी संभालना था। तो लाला को स्तनपान कराया थी उसको नीचे रख दिया और यशोदा मैया वो दूध संभालने के लिए चली गई। कई भाव हम पूरा श्रवण करते आए हैं उस दूध उबलना उफलना, तो कहीं कहीं आचार्यों ने भाव लिखा है। तो यशोदा मैया जब दूध नीचे रखने के लिए गई चूल्हे से, तब इधर लाला जो कृष्ण है उनको गुस्सा आ गया कि मैं स्तनपान कर रहा हूँ और मुझे छोड़कर मैया दूध संभालने के लिए गई, तो थोड़ा सा क्रोध आ गया। और लाला ने सोचा कि मैं उसका जो मंथन कर रही थी यशोदा मैया उसका मटका ही मैं फोड़ देती। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ लिखते हैं कि एक शिला पत्थर वहाँ शिला पड़ा था जो मछला कूटने का होता है उनका, जो उसको शिला पुत्र कहते हैं, उसको उठाया और मटका फोड़ दिया। लेकिन यशोदा मैया उधर से और ये मटका फोड़ दिया, तो वहाँ एक गुरुवाय में एक आचार्य हो गए नारायण भट्ट करके, वो शतक लिख रहे थे शिशु लीला को, जो बाल लीला पर एक 1000 श्लोक लिख रहे थे। तो नारायण भट्ट उस गुरुवाय में भगवान कृष्ण का सुंदर विग्रह है, उस विग्रह का दर्शन करते करते वो शतक लिख रहे थे। तो लिखते लिखते जब यह प्रसंग आया तो उसने लिखा कि जिस तरह सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं उसी तरह एक शिला उठाया कृष्ण ने और मटका फोड़ दिया। वहां कृष्ण प्रकट होकर बाल स्वरूप और कहा उस नारायण भट्ट को, मैंने शिला से नहीं मटका फोड़ा, वो जहां मंथनी उसी मटका में थी वो मंथनी को थोड़ा दबाया तो नीचे से मटका फूट गया। तो नारायण भट्ट ने कहा ऐसा क्यों किया आपने? तो कृष्ण ने कहा कि इसलिए मैंने ऐसा किया कि तो माँ को शंका ना जाए या पता ना चले कि मटका मैंने फोड़ा, क्योंकि वही मंथनी चला रही थी तो कहीं टकरा गई तो टूट गया ऐसा वो सोचने लगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब नारायण भट्ट कहते हैं आपने तो फोड़ा नहीं, तो आप वहां से भागे क्यों? तो भागना नहीं चाहिए ना आपने नहीं फोड़ा तो। मैंने कृष्ण कहता था कि नहीं नहीं फोड़ा तो मैंने ही था ना, इसलिए मैं भागा वहां से। वैसे माँ को पता ना चला कि मैंने फोड़ा है, लेकिन मैं तो जानता था मैंने ही फोड़ा है, इसलिए वहां से कृष्ण वहां से भाग गए। तो इसी तरह सुंदर लीला का दर्शन करते हुए नारायण भट्ट जो 1000 श्लोक की रचना की है गुरुवाय में, और गुरुवाय के जो आचार्य है उनमें से है नारायण भट्ट। तो इसी तरह सुंदर सुंदर लीला का वर्णन किए है वो। तो वहां से भागे और यशोदा मैया आई तो देखा तो मटका पूरा पूरा दही मक्खन पूरा कमरे में आया हुआ है, भर गया कमरा दही से। और कृष्ण वो छोड़कर भाग गए थे दूसरे कमरे में, तो वहां जाकर दूसरा जो मक्खन रखा हुआ था वो सबको बंदरों को आदि खाकर सबको खिला रहे थे। तब यशोदा मैया आ गई और देखा कि एक लाला का एक काम है, क्योंकि वो जहां से निकले थे तो दही में उनका चरण पड़ते हुए आगे गए थे, तो चिन्ह उस कमरे में गए वहां चिन्ह दिखता था। तो यशोदा मैया तुरंत जान गई कि लाला का ही काम है, तो तुरंत उस कमरे में वो चले गए। तो वहां देखा तो उखल के ऊपर चढ़कर कृष्ण मक्खन खा रहे और बंदरों को भी खिला रहे। तो यशोदा मैया का गुस्सा आ गया और उसको पकड़ने के लिए उसे भागी, और लाला उखल से कूद कर वो भी उस नंद के आंगन में गोकुल में भागने लगे। और यशोदा मैया पीछे और लाला कृष्ण आगे आगे जाते जाते प्रयास करने लगी यशोदा मैया, लेकिन वो तो बाल स्वरूप में 3 साल के, भागने में माहिर है कृष्ण। और यशोदा मैया का थोड़ा शरीर मोटा है तो कम भाग रही है उनके पीछे, तो पकड़ नहीं पाते हैं। तो अनेक अनेक आचार्य और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो मुनियों जो ध्यानी है जो ज्ञानी है उनके पकड़ में जो भगवान कृष्ण नहीं आते हैं वो बाद में फिर यशोदा मैया उनको पकड़ लेते हैं। और पकड़ लेने के बाद हाथ में शरीर है तो कृष्ण बाहर से भय दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं और अंदर से क्रोध है थोड़ा, बाहर से डर डर दिखा रहे हैं कृष्ण, डर गए यशोदा मैया से और अंदर से थोड़ा क्रोध भी है। तो यशोदा मैया कृष्ण को डरे हुए देखकर वो छड़ी फेंक देती है। फेंकने के बाद यशोदा मैया बांधने के लिए तैयारी करते हैं। तो वहां आचार्य भाव देते हैं कि यशोदा मैया का भाव यही नहीं था कि उनको बांध कर रख दे, यहाँ सजा देने का भाव नहीं था। राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि यशोदा मैया का भाव यही था बांधने का, ताकि वो भाग न जाए, क्योंकि क्रोध किया था ना यशोदा मैया, उनको छड़ी दिखाई थी ने आए। कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बलराम भी कहते हैं और अन्य सखा भी कहते हैं कि नंद यशोदा तो गोरे हैं और तू काले है, यशोदा का पुत्र नहीं है। इसी बात बार बार कृष्ण कहते थे, तो यशोदा मैया को डर लग गया, मैं पहली बार इतना क्रोध किया हूँ, छड़ी दिखाया हूँ, तो शायद घर छोड़कर भाग जाएगा, तो वो उसको पता चल जाएगा और क्रोध के कारण घर छोड़कर भाग जाए, तो इसी को अगर भाग न जाए उसी भाव से कृष्ण को यशोदा मैया बांधते हैं। जब ऋषि से बांध दिया तब स्नेह के कारण स्वबंधने भगवान कृष्ण अपने ही स्वबंधने अपने आप इच्छा के कृपा के कारण यशोदा मैया से ऋषि से बंध गए, और इस प्रेम पूर्ण प्रेम के भाव पूर्ण ऋषि से कृष्ण बंध गए। लेकिन गौरांग महाप्रभु जो है यशोदा मैया ने तो ऋषि से बांधा, लेकिन शशि माता ने गौरांग महाप्रभु को वसन से बांध लिया था। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया कटवा में, और कटवा से निकलकर जब वो भाग रहे थे, वो तुरंत सोचने लगे मुझे वृंदावन जाना है, अभी यहाँ नहीं रहना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो तुरंत कटवा से निकलकर वो भागने लगे वृंदावन की ओर, और वृंदावन की ओर भागने लगे, और भागते भागते एक दिन दो दिन तीन दिन उसी स्थान पर चार देश में परिभ्रमण करते रहे, और उनके साथ पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और आचार्य रत्न, ये तीनों आ रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था कि नित्यानंद प्रभु पीछे आ रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु अकेले जा रहे हैं, उनका हालत कभी भाववेश में अगर गिर जाते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, उनको संभालना बहुत आवश्यकता है, इसलिए नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे आ रहे थे। और तीन दिन इसी तरह वो चलते चलते आगे निकले, तब नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अभी कुछ युक्ति करना होगा, तो युक्ति नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जो वहाँ गौचरण करा रहे थे बच्चे ग्वाले, उसने नित्यानंद प्रभु ने जाकर उस बच्चे से कहा कि अगर कोई सन्यासी आ रहा है, अगर कोई पूछे कि वृंदावन कहाँ है, तो उसको ऐसा कहना कि पूर्वी तट पर आप जाइए, उसी तरह वृंदावन है उसी साथ। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ से निकल के और चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए, तो वही हुआ जो नित्यानंद प्रभु इच्छा थी, वो पूछा उस बालक के जो वाला है गाय चरा रहे थे, उस चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन कौन सी दिशा में है। तब उस ग्वाला ने कहा कि पूर्व दिशा में, जो नित्यानंद प्रभु ने कहा था उसी तरह उसी दिशा में जाए। आगे चलकर वहाँ गंगा नदी के तट पर आ गए, पश्चिमी तट पर, वहाँ नित्यानंद प्रभु भी खड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, अरे श्रीपाद आप यहाँ कैसे आ गए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं भी आपके साथ वृंदावन आना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कितना दूर है। तो नित्यानंद प्रभु ने आ गया ये वृंदावन ही है, ये जो बिहारी है ये यमुना है, यही वृंदावन है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की वचन सुनकर भाव विभोर होकर यमुना जी का प्रणाम करते हुए स्नान करने लगे उसमें यमुना में, और उसी समय नित्यानंद प्रभु ने जो मुकुंद था उनको भेजा कि आप शिष्य माता को बुला कर लाओ, और आचार्य रत्न को कहा कि आप अद्वैत शांतिपुर में जाइए और अद्वैत आचार्य को बुला कर लाइए इसी स्थान पर, और मुकुंद को कहा कि तुम शिष्य माता को बुलाकर शांति नगर में लेकर आइए अद्वैत आचार्य के घर पर। अब सब स्नान हो गया चैतन्य महाप्रभु का, अद्वैत आचार्य वहां नाव लेकर आ गए उसी तट पर। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे अद्वैत आचार्य आप कैसे वृंदावन पहुंच गए, आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ। तब अद्वैत आचार्य कहते हैं, आप जिस स्थान पर हो वही वृंदावन है, आप वृंदावन में है लेकिन आप अभी इस गंगा के तट पर है, नवद्वीप में है, तो आप चलिए हमारे घर पर। और बहिर्वास वो सब दिया नए वस्त्र अद्वैत आचार्य ने। अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की ओर देखते हैं, नित्यानंद प्रभु की ओर, तुमने ठग लिया मुझे, वृंदावन कहकर इधर ही रख दिया। लेकिन अद्वैत आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, जो श्रीपाद नित्यानंद कहते हैं वो सही है, आप जहाँ जिस स्थान पर जाते वही वृंदावन है, और जहाँ और ये स्नान किया जो आपने वास्तव में वही यमुना है। तो पूर्वी तट पर बहती वो गंगा है और पश्चिमी तट पर जो बहती है वो यमुना है, क्योंकि इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में उसका संगम होने के साथ पूर्वी तट पर यमुना बहती है और पश्चिमी तट पर गंगा बहती है, इसलिए जो आपने स्नान किया वो पूर्वी तट पर किया है वही यमुना है। तो फिर बाद में अद्वैत आचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु नए वस्त्र पहनकर उनके घर पर जाते हैं, और जाने के बाद मुकुंद शशि माता को भी वहां लेकर आते हैं। तो वहां चैतन्य महाप्रभु खूब कीर्तन करते हैं और अद्वैत आचार्य के घर पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कहीं व्यंजन का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया है कि अद्वैत आचार्य ने कितने व्यंजन बनाए थे महाप्रभु को, क्योंकि 3 दिन से महाप्रभु ने कुछ ग्रहण नहीं किया था, सन्यास लेकर तुरंत ही वो भागे थे और उसी स्थान पर परिभ्रमण करते करते 3 दिन बीत गया था, कुछ ग्रहण नहीं किया था। तो अद्वैत आचार्य को पता था, तो सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर चैतन्य महाप्रभु को खिलाए, और माता शशि भी वहां आई। तो बहुत चैतन्य महाप्रभु का जो घुंघरालू बाल थे वो नहीं देखकर शशि माता बहुत रुदन करने लगी, और महाप्रभु भी रुदन करने लगे, उनके गोद में सर रखकर वो भी रोने लगे। तब शशि माता का प्रेम विह्वल देखकर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, हे माता, तुम्हारे पालिते देह जन्म तुम्हार हेते, कोटि जन्म तुम्हार ऋण नाथ कारी शोधित है। हे माता, ये शरीर जो मेरा शरीर है ये आपने पालन किया है, और आपने ही इस शरीर का जन्म दिया है, और इस जन्म और पालन करने के कारण कोटि जन्म तुम्हार ऋण, मैं कोटि जन्म तक मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, और मैंने जो संन्यास लिया है जानी वा ना जानी खेली यदि संन्यास तथापि तुम्हारे कबू नहीं बे उदास। हे माता, मैं जान कर या अनजाने में संन्यास लिए, इतना भाव में आ गए चैतन्य महाप्रभु कि अपना जो संन्यास ग्रहण किया था वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, वही गौरांग रूप में आए, तो पूर्ण ज्ञान है संन्यास लेना भी। लेकिन ये माता के भाव को देख कर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अनजाने में, जानकर या अनजाने में मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन मैं आपका यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने भले ही संन्यास लिया लेकिन जो तुम्हारी इच्छा है वही मैं करूंगा। तुम्ही यहां कही आमी तहा रहे भी, तुम्ही यही आज्ञा करो यही तो करी भी। हे माता, आप जिस स्थान पर रहने के लिए कहोगे वही स्थान पर मैं रहूंगा, तुम्ही जो आज्ञा करो वही मैं पालन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु शशि माता का प्रेम देखकर आगे पुश कर ही नहीं पाए कि क्या करना है कहाँ जाना है, जो भी शशि माता आज्ञा दे वही उनको पालन करना था। तब शशि माता कहते हैं, आते यही युक्ति बाल मोर मने हलय, नीलाशल रहो यदि दुई कार्य है। तब शशि माता कहते हैं कि हे गौरांग, नीलाशल में रहो, नीलाशल में रहने से 2 कार्य होगा, एक तुम्हारा संन्यास धर्म का रक्षण भी होगा और नीलाचल जो नजदीक है, वृंदावन तो बहुत दूर है, तो नीलाचल नजदीक होने के साथ साथ तुम्हारा हर समय मुझे खबर अंतर मिलता रहेगा, तुम्हारा समाचार मिलता रहेगा, और इसी नजदीक होने के साथ साथ तुम्हारा हम देखभाल कर पाएंगे और तुम्हारा संन्यास धर्म का भी रक्षण होगा। तो इसी तरह शशि माता ने भी चैतन्य महाप्रभु को प्रेम के वचन के द्वारा 18 साल जो नीलाचल में निवास किए रहे, वो माता की आज्ञा का पालन किया, और इस प्रेम के कारण, शशि माता के प्रेम के कारण चैतन्य महाप्रभु ने अपना निर्णय बदल दिया। यदि कि उनको जाना था वृंदावन, लेकिन माता की आज्ञा से, माता का प्रेम देखकर उसने वो नीलाचल में निवास किया। चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक नीलाचल में निवास किए, लेकिन 6 साल परिभ्रमण में गया और 18 साल निरंतर जगन्नाथपुरी में निवास किए, तो माता की आज्ञा से। इसी तरह जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, तो उस वंश के कारण, प्रेम के वंश के कारण भगवान बन जाते हैं, या उनकी आज्ञा के कारण भगवान जो उनकी इच्छा के अनुसार उनका वो इच्छा पूर्ण करने के लिए वही कार्य करते हैं। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु प्रेम के कारण, शिष्य माता के प्रेम के कारण वहाँ रह गए, और कृष्ण माता यशोदा ने जो बांध दिया, और बांधने के साथ साथ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो लाभ, जो कृपा, जो प्रसाद यशोदा मैया को मिला, न विरंचि न भवो न श्री, वो प्रसाद न विरंचि ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ, भव शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, और न श्री लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। जो प्रसाद प्रसादम लेबे गोपी, जो प्रसाद लाभ किया यशोदा मैया, वो ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ, शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, और न स्वयं भगवान विष्णु की हमेशा सेवा करती है लक्ष्मी जी, उनको भी ये प्राप्त नहीं हुआ जो यशोदा मैया को प्राप्त हुआ जो लाभ। क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, और श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि वो गुणावतार है ब्रह्मा जी शिव जी, तो ब्रह्मा जी भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन वो भगवान की इतना, भगवान से इतना प्रेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी कार्य में, अपने कार्य में बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि उनके उपासक कहीं कहीं रहते हैं ब्रह्मा जी का, शिव जी का, और अन्य अन्य प्रकार वरदान मांगते हैं, तो वो बाध्य होकर उनको देना पड़ता है। अगर इच्छा नहीं है फिर भी उनको वरदान देना पड़ता है, क्योंकि वो उपासना करते हैं, उनका फल उनको देना पड़ता है। जिस तरह हिरण्यकश्यपु 1000 साल तक तपस्या किया और ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, तो प्रकट होने के साथ वो चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी उनको वरदान देने के लिए, लेकिन 1000 साल तपस्या का फल उनको विवश होकर देना पड़ता है। इसी तरह वो ब्रह्मा जी भी भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर पाते, इसलिए ब्रह्मा जी जब भगवान से स्तुति करते हैं तब कहते हैं कि मुझे इस व्रज में जन्म मिले लता के रूप में, क्या गुल्म के रूप में, ताकि मैं उस व्रजवासी के स्मरण के रस को प्राप्त कर सकूं। इसी तरह ब्रह्मा को भी इस जो यशोदा को लाभ प्राप्त हुआ वो ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुआ, और शिव जी को भी न भव, भगवान शिव जी को भी वो प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शिव जी तमोगुण धारण करते हैं, और तमोगुण के कारण अन्य गण्य उनके भक्त जो है होते हैं, उपासक होते हैं, तो भक्त नहीं बोला जाता है, उनका उपासक जो शिव जी का है, वो उपासक वो भी तमोगुण में ही प्राय रहते हैं, जो प्रसंग रात के श्लोक में हम देखेंगे आगे। तो शिव जी का भी तमोगुण धारण करके पूरा विश्व का विनाश करते हैं, और उसका लाभ उठाते हुए जो शिव जी आशुतोष है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो कर्मी लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोग भगवान शिव की उपासना या आराधना करते हैं। तो इसी तरह शिव जी भी वो प्राप्त नहीं कर पाते जो यशोदा मैया को लाभ किए। विष्णु धर्मोत्तर में एक प्रसंग श्री जीव गोस्वामी लिखते भक्ति संदर्भ में कि एक विश्वसेन नाम के एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण परिभ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा। उस गांव के थोड़े दूर में कुछ जंगल में एक मंदिर था। वो मंदिर में वो कुछ विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम कर रहे थे उसी सुबह हो गए। सुबह होते ही उस गांव का जो अध्यक्ष था उनका पुत्र वहाँ वो शिव जी का भक्त था। तो शिव जी का भक्त होने के कारण वो वहाँ शिव जी की पूजा करने के लिए आए। तो आए तो उनका वहाँ सर बर दर्द करने लगा उस अध्यक्ष का पुत्र का। तो सर दर्द करने लगा तो वहाँ जाकर वो सोचने लगा कि मैं आज शिव जी की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ वो ब्राह्मण बैठे थे विश्वक्षण नामक ब्राह्मण। तो उस अध्यक्ष के पुत्र ने कहा कि आप ही आज शिव जी का पूजा कर दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो वो ब्राह्मण ने कहा मैं तो विष्णु भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, मैं शिव जी की पूजा। यदि ये जानिए विष्णु धर्मोत्तर में यह प्रसंग रखा है भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने रखा है, जो कोई शंका मत कीजिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं वैष्णव हूँ, मैं विष्णु भक्त हूँ, मैं शिव जी की आराधना पूजा नहीं करूँगा। तो तीन बार कहा उस अध्यक्ष के पुत्र ने, तो ब्राह्मण ने मना किया। तो उनको क्रोध आ गया। तो शिव जी के भक्त होते हैं तो उपासक होते हैं वो क्रोधी रहते आए। उनको क्रोध आ गया तो उन्हें तलवार निकाला, तुरंत मारने के लिए तैयार हो गए उस ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण डर क्या कारण वो कहने लगा ठीक है मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, ये पूजा करता हूँ। तो ब्राह्मण गया शिव जी के पास, शिव जी के लिंग थे। वो मन में विचार करने लगे कि शिव जी तो प्राय तमोगुण के देवता हैं, तमोगुण धारण करते हैं, लेकिन जो नरसिंह भगवान है वो तमोगुण को दूर करने वाले हैं, अंधकार को दूर करने वाले हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। जो तब वो ब्राह्मण विश्वक्षण नामक ब्राह्मण ओम श्री नरसिंहाय नमः, ओम श्री नरसिंहाय नमः ऐसे बोलने लगा, मंत्र उच्चारण करने लगा। तो जैसे मंत्र उच्चारण करने लगा जोर जोर से, तो खड़ा ही था उधर अध्यक्ष का पुत्र, मुखिया का पुत्र। तो वो तो सोचने लगा मैंने कहा था उनको शिव जी की आराधना करने के लिए, ये तो नरसिंह भगवान की भक्ति करता है, मंत्र उच्चारण करता है। तो उनको फिर से क्रोध आ गया। क्रोध के कारण उसने तलवार निकाला फिर से। जैसे तलवार निकाल कर उनको मारने के लिए गया मस्तक काटने के लिए, तुरंत उस लिंग से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह प्रकट होकर उसी का ही गला काट दिया, और उनके परिवार वाले जो साथ में फिर आए थे उन सबको मार दिया भगवान नरसिंह। तो नरसिंह भगवान ने उनको मारकर उस ब्राह्मण पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। और आज भी वो मंदिर है दक्षिण भारत में, उसको लिंग स्पट नरसिंह भगवान कहते हैं। दक्षिण भारत में विशाल मंदिर है, वो आज भी वो मंदिर है। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जो विष्णु के उपासक होते हैं वो ऐसे होते हैं, सॉरी शिव जी के, क्षमा कीजिए, जो शिव जी के उपासक होते हैं वो प्राय अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए ही प्राय भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, और इंद्रियों की किसी वृद्धि वो इंद्रिय तृप्ति में ऐसे ही वो वरदान मांगते हैं। कई प्रसंग है ऐसे भागवत में भी। तो भगवान शिव को बाध्य होकर ऐसे उनके उपासकों को भी वरदान देना पड़ता है, और वो भी ऐसी जो यशोदा मैया को जो लाभ प्राप्त हुआ वो प्राप्त शिव जी भी नहीं कर पाए। यदि भी भगवान शिव निरंतर भगवान राम का जप करते हैं, लेकिन जो प्रेम यशोदा मैया को मिला वो शिव जी को भी नहीं मिला, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और श्री लक्ष्मी जी, प्राय हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी को भी रासलीला में प्रवेश नहीं मिला, आज भी वो तपस्या करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ बहुत चर्चा उसके विषय में किया है चैतन्य चरितामृत में। तो लक्ष्मी को भी वृद्ध में आज भी तपस्या करती है बेलवन में, लेकिन वो ऐश्वर्य के प्रभाव से जो वृद्धवासी है गोपियों है उन्हें अनुगत्य स्वीकार नहीं करना चाहती है, कि वो जानते कि मैं इतने ऐश्वर्यशाली हूँ, मैं कैसे उन गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करूँ। उस अहम भाव से होकर आज भी तपस्या वो लक्ष्मी जी बेलवन में कर रही है। तो जो लाभ यशोदा मैया को मिला वो भी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी तरह यशोदा मैया बांधकर लाला को मुकुल के साथ अपने गृह कार्य में लग गए। तो जब गृह कार्य में लग गई यशोदा मैया, तब कृष्ण ने देखा उस आंगन में जो दो वृक्ष है, अर्जुन वृक्ष, उस पर भगवान कृष्ण की नजर गई। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस पर नजर गई और वो वृक्ष कुबेर के पुत्र जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, वो नारद के साप के कारण वो वृक्ष जो नहीं प्राप्त किए थे। ऐसा सुनते ही सुखदेव गोस्वामी के मुख से तब दीक्षित महाराज ने तुरंत प्रश्न उठाया, जिज्ञासा किए कि नारद मुनि के श्राप से ऐसा कौन सा उसने कार्य किया था कि नारद मुनि को श्राप देना पड़ा, उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो मणिग्रीव और नल कुबेर जो कुबेर जी के पुत्र थे, वो इतने धन और ऐश्वर्य से मद हो गए कि वो वितरण कर रहे थे उस कैलाश में। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुद्रस्य अनुसरो भूत्वा चंद्रिष्टो धन आत्मजो, रुद्र के शिव जी के अनुसर थे और धन आत्मजो, धन का आत्मजो कुबेर जी के पुत्र थे। तो एक तो शिव जी के अनुसर थे और जो देवताओं के कुभ्याक्ष जो सबके कोशक जो धन है उनका रक्षा करने वाले कुबेर जी है, तो उनके ही पुत्र थे, इतना धनवान थे। तो धन के अभिमान के कारण उस कैलाश में वो विचरण कर रहे थे। और कैसे विचरण कर रहे थे, कैलाश उपवने रम्य मुंदा किनारा मधो तटवे वारुणी मदिरा पीतवा मदापूर्ण लोचनो, और परिभ्रमण तो करते थे और साथ साथ में वारुणी नाम की मदिरा वो पिए हुए थे, और मद के कारण इतना मदिरा पिया था कि उनकी आंखें थी वो लाल लाल हो गई थी, और ऐसे मतवाले होकर वो घूम रहे थे। और घूमते घूमते उस मंदाकिनी के तट पर वो आए, जो आज का श्लोक है, अंत प्रवेश गंगायाम, और आने के साथ उस गंगा में प्रवेश किए वस्त्रहीन होकर। और उस स्थान कैसा था, वन रजनी भी उस जंगल था, उस किनार पर तट पर और मंदिर के तट पर, और सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं किस तरह वो स्नान कर रहे थे, उनके साथ क्रिया भी थी, और निर्वस्त्र होकर वो मंदाकिनी जल में स्नान कर रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं जिस तरह हाथी हथनियों के साथ जलाशय में स्नान करते हैं उसी तरह वो स्नान कर रहे थे। एक तो ये कुबेर जी के पुत्र थे, ऊपर से इतने ऐश्वर्य था और साथ साथ में रुद्र के अनुसार थे, तो उनका कोई भय नहीं था उनका कोई हानि कर सके उसी, और इतना मद और अभिमान में आ गए थे वो, किसी की प्रभाव वो नहीं कर रहे थे। तो प्राय हम देखते हैं कि जिनके पास ज्यादा धन हो जाता है उनको अभिमान बढ़ने लगता है, जिस तरह धन बढ़ता है उसी तरह उनका अभिमान भी बढ़ता है। जब भक्ति मार्ग में आए उनका बात नहीं है, लेकिन जब भक्ति मार्ग छोड़कर जिनके पास धन बढ़ता है हमेशा उनका मद भी साथ साथ में बढ़ता है। और कहते हैं कि दारू शराब पीने से नशा बढ़ता है, लेकिन धन लक्ष्मी जेब में आने से नशा बढ़ता है व्यक्ति का। तो इसी तरह ये मणिग्रीव और नल कुबेर पूरे आवृत थे इस नशा से और मद से। और कुबेर जी के पुत्र उनके पिता का भी उनका ज्ञान नहीं था, कितना महान है उनके पिता कुबेर जी। उनकी कुबेर जी की व्याख्या और चर्चा होती है श्रीमद् भागवत में सातवें स्कंद में, जब ध्रुव महाराज के भाई उत्तम का एक यक्ष ने वध कर दिया। वध करने के बाद जब ध्रुव महाराज को पता चलता है कि उनके भाई का उत्तम का वध कर दिया यक्ष ने, जब ध्रुव महाराज विजय रथ लेकर उस अलकापुरी में सराय करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं अकेले जाकर, ध्रुव महाराज अकेले और पूरा अकेले जाकर उस रथ को लेकर जाकर आक्रमण करते हैं अलकापुरी में, जो पूरा यक्ष से भरा हुआ है, करोड़ों यक्ष वहां निवास करते हैं, और अलकापुरी है जो कुबेर जी का निवास स्थान है उसको अलकापुरी कहते हैं। तो उस अलकापुरी के ऊपर आक्रमण करते हैं ध्रुव महाराज, और साथ साथ में कई यक्षों का वध कर देते हैं। और वध करने के बाद जब यक्ष को लगता है कि नहीं हम इसको नहीं परास्त कर पाएंगे, तब वहां से भाग जाते हैं। और भागने के बाद अनेक मायावी वो रचना करते हैं सब यक्ष मिलकर, तो ध्रुव महाराज को पूरा मायावी से ढक देते हैं वो लोग, उनको लगता है कि अभी ये ध्रुव महाराज समाप्त हो गए। लेकिन ध्रुव महाराज उस रखे हुए उनको मायावी से फिर से वहां बाहर निकलते हैं। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि जिस तरह बादल से ढके हुए सूर्य निकलते हैं उसी तरह ध्रुव महाराज रथ लेकर वहां से फिर से निकलते हैं, और जोर से ध्रुव महाराज यक्षों के साथ युद्ध करते हैं। तो कई यक्षों का फिर वध कर देते हैं, उनकी गणना भी लिखी है भागवतम में सातवें स्कंद में, कितने यक्षों का वध कर देते हैं ध्रुव महाराज अकेले ही। फिर युद्ध ऐसे कई सालों तक युद्ध चलता है, फिर मनु महाराज वहां पधारते हैं और ध्रुव महाराज को समझाते हैं कि आप इस तरह शुद्ध हृदय वाले होकर भी ये युद्ध करना क्रोध करना उचित बात नहीं है, आप ये युद्ध बंद कर दीजिए, क्योंकि आप युद्ध कर रहे हैं वो अलकापुरी है और वहां जो निवास करते हैं वो हेलना गिरीश भात्रम, आप उनकी अवहेलना करते हो, जो गिरीश भगवान शिव है उनका भात्र उनका मित्र है सखा है कुबेर जी, उनकी अवहेलना आप कर रहे हो, क्योंकि वो महान तपस्वी और तेजस्वी है कुबेर जी, तो उनकी अवहेलना करने से ऐसे तेजस्वी पुरुषों का अवहेलना करने से कुल का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम ये युद्ध बंद कर दो। तब कई तरीके से समझाते हैं मनु महाराज ध्रुव महाराज को, फिर उनकी बात सुनकर ध्रुव महाराज युद्ध समाप्त करते हैं। और जैसे ही समाप्त करते हैं और मनु महाराज वहां चले जाते हैं, तुरंत कुबेर जी वहां आते हैं। यदि देखा जाए तो कुबेर जी के अनेक अनुचर और उनके आश्रित थे, कई लोगों यक्ष का वध ध्रुव महाराज ने कर दिया था, लेकिन वहां आकर ध्रुव महाराज से कहते कि तुम शुद्ध हृदय वाले हो, और तुमने भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त किया है, इसलिए तुम महान हो। धूप महाराज का बहुत गुणगान करते हैं और कहते हैं कि आपको जो इच्छा हो मुझसे मांगिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यदि भी ध्रुव महाराज ने कहीं अपना वध किया था, फिर भी कुबेर जी कहते कि प्रसन्न हूँ, क्योंकि उसने मनु महाराज की बात स्वीकार करके, अपने पूर्वजों की बात स्वीकार करके युद्ध समाप्त कर दिया था। तो इसी बात को लेकर कुबेर जी प्रसन्न होकर उनसे कहते कि आपको जो वरदान चाहिए वो मांगिए। तो कुबेर जी को कहते हैं ध्रुव महाराज, मुझे भगवान विष्णु में या कृष्ण में मच लगे ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो इसी तरह ध्रुव महाराज भी कुबेर से ये वरदान मांगते हैं। ऐसे महान कुबेर जी के पुत्र है ये दो, जो मद के धन के मद में जो घूम रहे हैं, ऐसे अपने पिता का भी ख्याल वो नहीं करते। जैसे धन का किसी व्यक्ति का नशा चढ़ जाता है, अपने परिवार का या देश का या कुल का किसी का भी वो ध्यान नहीं रखते। तो इसी तरह ये कुबेर जी के पुत्र होकर भी इस मंदाकिनी जो पवित्र नदी है उसमें वो नग्न स्नान करने लगे, और जिस तरह हाथी और हथिनी के साथ स्नान करते हैं, सुखदेव गोस्वामी हाथी का एक उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि हाथी स्पर्श इंद्रियों के प्रबल उदाहरण है। जो हमारे पांच ज्ञान इंद्रिया है, आंख, कान, नाक, त्वचा, तो अनेक अनेक इसमें योनि है जो एक एक इंद्रियों में प्रबल होती है। जिस तरह रूप को देखने के लिए फतिंगा की इंद्रिया प्रबल होती है और उसको देखने के लिए, रूप को देखने के लिए अपने आप को नष्ट कर देता है, और कान इंद्रिया श्रवण करने की इंद्रिया प्रबल रहती है हिरण की, मांसी सुनकर वो शिकारी के जाल में वो फंस जाता है, और स्वाद लेने की इंद्रिया मछली की प्रबल रहती है, ताकि वो स्वाद हम देखते हैं कि जलाशय या नदी में थोड़ा सा भी आटा डाल दे तो कई सारी मछलियाँ एकत्रित हो जाती है, क्योंकि उनकी स्वाद लेने की इंद्रिया प्रबल रहती है मछली के, और उसी प्रबल इंद्रिय के कारण वो अपने आप को जाल में फंसा देती है। और इसी तरह स्पर्श इंद्रिया की प्रबल रहती है हाथी की, तो स्पर्श इंद्रियों के उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि वही कार्य में वो लगे हुए थे दोनों भाई। इसलिए सुखदेव गोस्वामी हाथी का उदाहरण देकर कहते हैं कि ये दो भाई जिस तरह हाथी स्नान करते हैं अपने हथिनियों के साथ, उसी तरह ये दो भाई पवित्र गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि प्राय लोग जाते हैं गंगा नदी में शुद्ध होने के लिए, पाप धोने के लिए, लेकिन कई कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। तो पाप धोने के लिए हम देखते हैं कि कई लोग जाते हैं, जब कुंभ मेला लगता है तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है, स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब स्नान करने के बाद आते हैं तो स्थिति वैसे ही रहती है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जो गंगा नदी में स्नान करते हैं उनका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का प्रभाव मन के ऊपर होना चाहिए, मन के कारण होता है, ना कि स्नान करने से या शरीर को उसमें स्नान कराने से। अगर मन में श्रद्धा है तो उसी तरह वो भाव ग्रहण करेगा, जो शुद्ध जल है गंगा जी का तो उसमें स्नान करने से पवित्र होता है, पाप धोया जाता है, फिर व्यक्ति पाप नहीं करेगा। और कोई कोई जाते हैं स्नान करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, उस तरह स्नान करके आते हैं और जैसे पहले थे वैसे ही वो कार्य करते, तो उसका पाप नहीं धोया जाता, उसका पाप समाप्त नहीं होता है। तो पवित्र नदी गंगा जी में वो स्नान करते हैं, जो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक अनेक लोगों का, लाखों लोगों को पवित्र करती है, और अनेक लोगों का जीवन भी गंगा नदी के प्रभाव से चलता है। हम देखते हैं प्राय जो गंगा नदी के तट पर जो निवास करते हैं, अनेक उनकी रोजी रोटी भी उनसे चलते हैं, जो गंगा नदी के जल से ही। और वो उसमें भी देखा जाता है कि मछली पकड़ कर को अपना गुजाराना चलाते हैं, गंगा नदी के जल में मछली पकड़ कर जाल डालकर हम नवदीप जाते हैं, वहाँ बड़ा बड़ा जाल बिछाया रहता है, तो उस जाल में मछली पकड़ कर उनको बेचकर अपना जीवन चलाते हैं, और जो श्रद्धावान लोग हैं उसमें स्नान कर कर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। तो इस पवित्र जो गंगा जी है, जो सगर महाराज के 4000 पुत्र को उद्धार करने के लिए भगीरथ महाराज ने अवतरण करवाया इस पृथ्वी लोक पर, और अवतरण करने के बाद 60,000 जो कपिल भगवान के साथ से जो भस्म हो गए थे जलकर, कई सालों के हजारों लाखों साल के बाद जहाँ उनकी अस्थि पड़ी थी, उस स्पर्श होने के कारण उद्धार हो गया उनका 60,000 पुत्र का। ऐसी पवित्र गंगा जी में ये लोग स्नान करते हैं निर्वस्त्र होकर, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करेगा, चाहे कितना भी वो उसको भोग दे तो और वो संतुष्ट करने का यह प्रयास करता है। कितना भी इंद्रियों को हम संतुष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन इंद्रिया कभी संतुष्ट नहीं होती। ये यक्ष है जो देवता की योनि मानी जाती है, मनुष्य शरीर में इन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की होगी, और इस इच्छा करते करते वो देवता योनि प्राप्त किए, फिर भी उनकी इंद्रिय तृप्ति की भावना संतुष्ट नहीं हुई, और वहाँ भी वही कार्य में लगे। जब तक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तपस्या में या भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तब तक इंद्रिया कितना भी आप उनको भोग दो और वो मांगते रहेगी। हर एक इंद्रिया जिस तरह एक उदाहरण देते हैं साधु के, एक राजा के पास एक बकरा था। उस राजा ने ऐलान किया, अगर एक बकरा को कोई संतुष्ट कर देगा 3 दिन में, तो मैं उनको मुंह मांगे वंश, उनकी जो इच्छा उनके मुंह मांगे वरदान दूंगा। तो प्रजा सोचने लगी कि बकरा को संतुष्ट करने में क्या दिक्कत है, वो तो थोड़ा घास डाल देगा संतुष्ट हो जाएगा। तो एक व्यक्ति आया कि बोल राजा मैं ले जाऊंगा उस बकरे को, मैं संतुष्ट कर दूंगा। और एक दिन खिलाया, 2 दिन खिलाया, 3 दिन खिलाया, पूरा पेट भर दिया बकरे का। और तीसरे दिन वो राजा के पास लेके गया बकरा को और कहा कि यह बकरा संतुष्ट हो गया। तो राजा एक घास का थोड़ा रखा था अपने, तो बकरे को दिया तो तुरंत वो बकरा खाने लगा। तो खाने लगा तो राजा का ये संतुष्ट कहाँ हुआ, अगर खा रहा है तो संतुष्ट नहीं है, अगर नहीं खाएगा तो ही संतुष्ट माना जाएगा। तो ख्याल हो गया। तो दूसरा व्यक्ति आया कि राजा मैं संतुष्ट करूंगा इस बकरे को, तो वो लेके गया, उसने भी वही प्रयास किया, फिर राजा के पास लाया कि संतुष्ट हो गया। तो राजा ने दिया घास तो फिर खाने लगा बकरा, क्योंकि बकरा का स्वभाव है कितना भी आप उनको खिलाओ कितने दिन तक, लेकिन उनके सामने घास रखेगा तो खाना शुरू करेगा। तो इसी तरह कई लोगों ने प्रयास किया संतुष्ट करने के लिए, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। परंतु भी एक व्यक्ति आया, वो लेकर गया बकरे को, 3 दिन तक रखा, और तीसरे दिन ले गया राजा के पास। तो राजा ने घास दिया तो बकरा पीछे भागा, घास नहीं खाया। तो राजा ने और प्रयास किया खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं खाया। तो राजा तो आश्चर्य पड़ गया, क्या किया उसने, कैसे संतुष्ट कर दिया, फिर मैं खिलाता हूँ वो पीछे भाग गया। तब उस व्यक्ति को पूछा कि आपने कौन सा उसको क्या खिलाया जो संतुष्ट हो गया। तो व्यक्ति ने कहा मैंने कुछ नहीं खिलाया, जैसे मैं लेके गया ना इधर से वैसे ही वापस लाया हूँ। तब बोला एक तो फिर क्यों नहीं खा रहा है घास। तब उस व्यक्ति ने कहा जब मैं अपने घर पर लेके गया घास रखता था, और जैसे ही वो खाने को लिया मुँह डालता था, मैं तुरंत उनके मुँह पर एक लकड़ी बांधता था। फिर दूसरी बार घास रखता था, और जैसे खाने को लिए जाता था तुरंत एक लकड़ी मुँह पर मारता था। तो 3 दिन तक लगातार उनके मुँह पर लकड़ी मारा, फिर बाद में वो छोड़ दिया, उस घास तरफ देखना भी छोड़ दिया। अब राजा समझ गए कि वास्तव में तुम बुद्धिशाली हो। तो इसी प्रकार हमारी इंद्रिया है, जब तक हम वो डिमांड करेंगे, हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम जिस तपस्या रूपी या भगवान के नाम रूपी भगवान की सेवा रूपी उनके इंद्रियों के पर प्रहार करेंगे हम, तभी हमारी इंद्रियां उस विषय से मुंह मोड़ेंगे, भाग जाएंगे, दूर जाएंगे। तो इसी तरह इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना से, न के उनको तृप्त करने का प्रयास। तो जिस तरह हम तृप्त करने का प्रयास करेंगे उतना ही वो और डिमांड करते रहेंगे, या यहाँ तक के देवताओं का शरीर भी प्राप्त करके भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये नल कुबेर के ये दो पुत्र, कुबेर जी के दो पुत्र, जो धन के अभिमान से गर्वित होकर उस जलाशय में जो मंदाकिनी के प्रभाव में वो स्नान कर रहे थे, यदि देखा जाए तो पवित्र स्थान वो कैलाश के उपवन में थे, भगवान शिव जी जहाँ निहा निवास करते हैं उसी स्थान पर जाकर ये लोग ऐसा कार्य करते हैं। ये धन के अभिमान में लोगों व्यक्ति का विवेक खो जाता है, वो क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो स्थान क्या है, सब भूल जाता है। व्यक्ति के जीवन में जब विवेकहीन हो जाता है तो उनका आचरण बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ऐसा सुंदर जल जो पवित्र करने वाला मंदाकिनी का जल था, और उपवन भगवान शिव का जो कैलाश का उपवन था, और उसी स्थान पर ये लोग नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। तो इस स्नान करते समय सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, अदृश्य अपनी इच्छा से श्री नारद मुनि वहाँ पधारे, क्योंकि भगवान से बारंबार मिलने के लिए नारद मुनि जाते हैं, शिव जी को मिलने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, आपस में भगवान की कथा का वार्तालाप करने के लिए। तो नारद जी भी वहाँ कैलाश से लौट रहे थे, तो उसी उपवन से गुजरे तो उसने ये दृश्य देखा श्री नारद जी ने, कि ये दोनों कुबेर जी के पुत्र होकर ये पवित्र गंगा जी में स्नान कर रहे हैं नग्न होकर। तब नारद जी को देखकर उनके साथ जो स्त्रियाँ थी वो अपने अपने वस्त्र पहनने लगी, लेकिन ये दो मूर्ख जो धन के मध्य में विमानी थे वो ऐसे ही खड़े रह गए। नारद जी जैसे ऋषि जो भगवान के पवित्र संत थे, उनका दर्शन करके व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है, लेकिन ये दोनों शराब के नशे में वहीं पर ऐसे ही खड़े रहे। तब नारद जी कृपा करके उन पर कृपा करने के लिए उनको श्राप देते हैं कि तुम जो नग्न अवस्था प्राप्त करके इस पवित्र जल में स्नान कर रहे जाओ, तुम्हें वृक्ष वनी प्राप्त हो जाए। आगे हम प्रसंग सुनेंगे विस्तार से। तो वृक्ष वनी प्राप्त हो जाए तो प्रार्थना करने, फिर उनको होश आया, फिर प्रार्थना करने लगे। तो नारद जी ने कहा आप तो वृक्ष वनी को प्राप्त होगा ही, लेकिन आप वृक्ष बनेंगे ब्रज में नंद बाबा के आंगन में गोकुल में, और भगवान कृष्ण जब जब द्वापर युग में अपनी लीला करेंगे उनका आप दर्शन कर पाएंगे, उसी समय आपका उद्धार होगा। तो नारद जी की कृपा से, एक महान संत की कृपा से, ऐसे नशे में अंध होकर जो स्नान कर रहे थे ऐसे व्यक्तियों पर भी आदि की कृपा से वो व्रज में उनको निवास मिला, और अंत में भगवत प्राप्ति प्राप्त किया। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि जिस तरह एक रोगी पुरुष या बालक, बालक को जब सोता होता है, नींद में होता है, तब उनकी माता उनको चीटी भर के जगाती है दवा पिलाने के लिए, उसी तरह नारद मुनि उनको ये जो अज्ञान रूप के अंधकार में गिरे हुए थे दोनों, उनको ये श्राप देकर जगाया, उनका जगाकर उनको व्रज में वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब भगवान के ऐसे साधु पुरुष की कृपा प्राप्त होती है तो वास्तव में ये श्राप नहीं है नारद जी का, यह कृपा है। अनेक अनेकों जन्म की तपस्या के बाद भी व्रज का वास नहीं मिलता है, लेकिन नारद जी की कृपा से इतना हीन गर्हित शरीर होने के साथ तो ये उत्कृष्ट पद प्राप्त कर लेते हैं। और इसका प्रसंग भी हम देखते हैं कि जब कालिया इतना विशिला होकर भी ब्रज में निवास कर रहा था और उनकी पत्नी आप भगवान से प्रार्थना करती हुए कहती है कि कौन सा इसने ऐसा कार्य किया था कि जो आपका शरण प्राप्त किए जो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होता है। तो उनके पूर्व जन्म की भी कथा आती है कालिया की कि एक वो पूर्व जन्म एक राजा था, राजा को एक रोग लग गया जो असाध्य रोग था, किसी औषधि से वो उसका मुक्ति नहीं हो पाता था, इतना असाध्य रोग उनको लग गया उस राजा को। तब उसका जो गुरु था कुल गुरु उसने उपाय बताया कि अगर आपको इस रोग से मुक्त होना है तो किसी परम साधु पुरुष का आप शरणामृत ग्रहण करो, शरणामृत पान करो। तो उस क्योंकि मरता क्या नहीं करता, उनका मृत्यु होने वाला था, तो उसका कुल गुरु की आज्ञा सुनकर वो जंगल में गए। जंगल में जाकर ढूंढने लगा कोई साधु जो महान साधु है, उनका शरण उड़ा भी प्राप्त करे। ढूंढते ढूंढते एक साधु देखा उसने जो तपस्या में बैठे हुए थे, तो वहां जाकर प्रार्थना की कि मैं आपका शरण तो मेरा रोग का निवारण होता है और मैं राजा हूँ, मैं जीवित रहूंगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी, तो इसलिए आप शरणामृत हमें दीजिए। तो उस महान ऋषि ने पहले मना किया, लेकिन ऋषि ने कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम पी नहीं पाओगे। तो राजा ने कहा मैं अब अवश्य पीऊँगा, आप अनुमति दीजिए। तब ऋषि ने अपने दोनों चरण बाहर निकाले तो उस चरण से ऐसा रोग था तो उसमें पस गिर रहा था, कुष्ठ रोग हो गया था, और उस कुष्ठ रोग से जो पस निकलता था वैसे पस दोनों चरण से निकल रहा था। और जैसे ही राजा के सामने आगे किया तो राजा तो क्या करे, विधवा में पड़ गया, अभी शरणामृत ग्रहण करे या न, फिर भी जिंदा रहना था, उसका इलाज भी वही था। तो शरणामृत पात्र रखा और शरण धोया उस ऋषि का। शरण धोने के बाद अब ग्रहण कैसे किया जाए, धो तो लिया लेकिन ग्रहण करना बहुत दुष्कर हो गया राजा ने, फिर भी लिया थैली में और ये पी नहीं पाए, वो सर पर सिर कर पीछे फेंक दिया, ऐसे मुंह में नहीं ले पाए क्योंकि तो उसको पीस सर पर लेकर फेंक दिया। तो उस ऋषि ने देख लिया, वो कुछ बोले नहीं ऋषि, लेकिन उनके शरणों में अपराध हो गया उस राजा का, तो उस अपराध के कारण उनको कालिया नाग बनना पड़ा। जो उस ऋषि का शरणामृत उसने फेंक दिया, अवहेलना किया, ग्रहण नहीं किया, इसलिए अगर ग्रहण किया होता तो उनको भगवत धाम प्राप्त हो जाता। तो अपराध लगने के कारण उस कालिया नाग बना, लेकिन नाग योनि प्राप्त करने के बाद उनका वास कहाँ हुआ, व्रज में, और शरणामृत थोड़ा उनके सर पर गिरा था, शरणामृत के प्रभाव से भगवान कृष्ण का शरण उनके सर पर प्राप्त हुआ। जो अनेक अनेक ऋषि मुनि अनेक अनेक साल तक जो शरण प्राप्त नहीं कर पाते, वही शरण काले के क्षण पर रंगभूमि बनकर भगवान उसके क्षण पर नृत्य किए। ऐसे महान ऋषि का आशीर्वाद से, कृपा से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है और ऐसे उसे पद प्राप्त हो जाता है। ऐसे हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद की कृपा से जो पाश्चात्य देश में जो लोग थे अन्य अन्य वेशनों से गिरे हुए, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से उच्च पद प्राप्त कर लिए। कई भक्त वैष्णव महान आचार्य वर्तमान में है प्रभुपाद की कृपा से, जो उनके 20 साल या 22 साल में प्रभुपाद के संपर्क में आए उससे पहले उनको कोई पता ही नहीं था कि उनका अगला जीवन कैसा होगा, वही 20 साल से जो 15 से 20 साल उनके 5-6 साल जो निशा में जो निशा करते थे और चार व्यसन में लगे हुए थे, उनका क्या भविष्य वो देख पाते थे, अगला उनका भविष्य क्या होगा, उसी में उनका जीवन वो सोच रहा होगा हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन प्रभुपाद ने कृपा करके उन पर वहाँ गए और उनका जीवन का परिवर्तन होकर उनको ब्रजवास या नवद्वीपवास भी दिला दिया। समझा, देखते हैं अभी कई ऐसे भक्त है विदेशी जो हमेशा व्रज में वास करते हैं, नवद्वीप में वास करते हैं, तो ये प्रभुपाद की कृपा से। और हम देखते हैं एक जो श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद ने 12 अध्याय तक अपना अनुवाद समाप्त किए हैं, उनके बाद का अध्यायों में जो अनुवाद और तात्पर्य लिखे हैं वो भी प्राण धन प्रभु है, मुख्य रूप से उनका ही नाम आता है। जो अमेरिका है, अमेरिका के है गोपी प्राणधन प्रभु, 2 साल पहले उसने गोवर्धन के तलेटी में अपना जीवन समाप्त किया और भगवत धाम प्राप्त कर लिया। ये प्रभुपाद की कृपा से ऐसा संभव हो सका, लेकिन उनको क्या पता था ये ब्रज कहाँ है, गोवर्धन कहाँ है, लेकिन वहाँ निवास करके उस व्रत प्राप्त कर लिए प्रभुपाद की कृपा से। तो इसी तरह ऐसे साधु की कृपा जब व्यक्ति पर होती है तब वो कैसा भी कार्य क्यों ना करें, कैसा भी उनका चरित्र क्यों ना, कितना भी गर्हित कार्य क्यों ना हो, लेकिन जब साधु की कृपा होती है तो निश्चित रूप से उनका जीवन परिवर्तन होकर जो निकृष्ट पद हो प्राप्त किए होते हैं, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम भी प्राप्त उस साधु की कृपा से हो जाता है। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें ये साधु की कृपा और प्रभुपाद जैसे वर्तमान में जो प्राप्त कर रहे हैं, ये प्रभुपाद की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर उनकी आज्ञा और निर्देश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो इसी तरह ये जो अंत प्रवेश किए उस पवित्र गंगा नदी के जल में और स्नान कर रहे थे, जिस तरह ये हाथी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे उसी तरह ये स्नान करते हैं। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में थोड़ा ही तात्पर्य दिया है, तो अगर व्यक्ति का मन पर आधारित है उनका स्नान करना, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, व्यक्ति के मन पर आधारित है तो उस किस तरह किस भाव से वो स्नान करते हैं। तो इसी के साथ प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य समाप्त करते हैं और प्रभुपाद की कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का, भगवान की सेवा करने का, तो उसी में हमारा जीवन लगाना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, अगर कोई छूटी रही हो तो क्षमा कीजिए, और कोई जिज्ञासा है तो वनमाल प्रभु से पूछिए। यदि कि कोई समय नहीं है ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद महाराज की जय गौर प्रेमानंद।